Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। सुनते रहिए दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद अभिनंदन जिंदल।
मेरी एक कविता है वहाँ के ऊपर।
शायरी सुनाई तो ये आपको बचपन से शौक था।
जैसे कहते ना, भगवान सबको कुछ ना कुछ देके भेजता है, तो ये मुझे उसने देखे।
ब्रह्म कुमारी के साथ, इस संस्था के साथ आप बचपन से ही जुड़ गए थे।
हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में मेरी मदर जाया करती थी, मैं 4-5 साल का था, तो उनके साथ टोली खाने चला जाया करता था।
सबसे अच्छी जो चीज़ आपके साथ रही, आपकी मदर का इन्फ्लुएंस।
हुनर परमात्मा ने दिया था, दिशा माने।
आबू में आप शिफ्ट कब, आपका आना कब हुआ?
10th के बाद मैं पहली बार आया।
यहाँ पे आना इसका मतलब ये भी था कि जो वहाँ की दुनिया थी उसको छोड़ के आना?
मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा छोड़ा है।
जो मेट्रो सिटीज में जो लाइफ है, वो लाइफ यहाँ पे भी जी जा सकती है आप?
मुझे मेट्रो की लाइफ बहुत पसंद है।
हर चीज कमर्शलाइज हो गई
जी।
यूट्यूब पे चैनल्स बन गए हैं, ब्रांड्स बन गए हैं, प्रोडक्ट्स बन गए हैं।
जो जैसा है वो उसने वही कर, और यही यात्रा है।
अब बच्चे को तो पता नहीं कि भगवान कौन है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी मासूमियत होती है।
अभिनंदन, ये बहुत दुख की दुनिया है। आप जिस चीज से भरे होते हैं ना, वो आप दूसरों को देते हैं।
ज्ञान, योग और ये जो कपड़े हैं ना, सफेद कपड़े, इसका इस्तेमाल करके अपने अंदर की इच्छाओं को जाहिर नहीं होने देते सामने वाले।
अभिनंदन जी, इच्छा जाहिर हो जाती है।
तो स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के एक नए एपिसोड में। आज है हमारे साथ एक बहुत ही रूहानी शायर, जिनका ब्रह्म कुमारी से एक बहुत बहुत ही अच्छा और पुराना नाता है। ना सिर्फ वो एक बहुत ही रूहानी शायर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, उसमें जो मुझे महसूस हुआ, एक जिंदा दिल इंसान है। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर विवेक भाई जी। ओम शांति।
अभिनंदन जी, आपका भी स्वागत है।
शुक्रिया। जैसे आपको सब जानते हैं कि एक बहुत ही आप खूबसूरत और रूहानी शायर हैं, तो क्यों ना आज हमारे एपिसोड की शुरुआत आपकी एक खूबसूरत शायरी से हो जाए।
अभिनंदन जी, देखिए, जब कोई शायरी सुनाता है ना, कोई कविता सुनाए, अच्छा शेर सुनाए, सब वाह वाह कर। तो मेरी एक कविता है वाह के ऊपर।
अच्छा,
किसी कविता है और उसमें संदेश बड़ा गहरा है, मुझे बहुत प्रिय है, तो वही मैं आपके सामने रखता हूँ।
जरूर जरूर जरूर।
आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। आप जब मुस्कुराएंगे ये मुस्कुराएगी, आप जब गाएंगे ये गाएगी।
क्या बात है।
आईने से जो मिले है वो निगाह जिंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी।
क्या बात है।
जो अपना ही सबसे अच्छा साथी हो, दुनिया में तो लोग सबसे प्यार करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी अपने आप से प्रेम, अपना साथ। जो अपना ही सबसे अच्छा साथी होगा, अपने जीवन में खुद प्रकाशमान बाती होगा, हर कदम होगी उसके लिए उत्साह जिंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। सीखने का, संवरने का हुनर है जिंदगी। सीखने का, संवरने का हुनर है जिंदगी, कभी प्रेम कभी हिम्मत कभी सबर है जिंदगी, खुदी को सवारने की तराशने की राह जिंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। जो वाह वाह कहेगा वो जीत जाएगा, जो वाह वाह कहेगा वो जीत जाएगा, इसी पल वाह कहो ये पल बीत जाएगा, पूरी करेगी तुम्हारी हर चाह जिंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वाह जिंदगी। वाह जिंदगी, वाह।
क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया भाई जी। वैसे ये जैसे आपने अभी शायरी सुनाई, तो ये आपको बचपन से शौक था, या फिर ये क्या, कैसे शुरुआत कैसे हुई इस चीज की?
अभिनंदन जी, ये शायद मैं पीछे से लेके ही आया था।
अच्छा।
जैसे कहते ना, भगवान सबको कुछ ना कुछ दे के भेजता है, तो ये मुझे उसने दे के।
आप नवाजे गए थे इस चीज से।
अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से शायद लिखना बाद में सीखा होगा, राइमिंग अपने आप उससे पहले बननी शुरू।
अच्छा।
और मुझे याद है, मैं शायद चौथी में होऊंगा, फोर्थ क्लास में, तो मैंने बरसात के ऊपर एक कविता लिखी, टीचर नहीं थी, पीरियड खाली था, तो मैं खिड़की फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं स्कूल में लिखी एक बड़ी सुंदर बरसात में कविता, किसी एक दोस्त ने नहीं माना। मैंने उनको कहा मैंने लिखी है, कोई नहीं माना, जो सबसे अच्छे थे उन्होंने भी नहीं माना। तो ये हालत है कि कभी आप कुछ लेकर आते हैं वो धीरे धीरे पता चलता है,
खुद को ही नहीं पता होता पहले।
मुझे याद है मैं काफ़ी 15-20 अरसे के बाद एक मित्र से मिला जो 5वीं क्लास से चला गया था, तो मैं उसको चिट्ठियां लिखा करता था। अच्छा। जम्मू में रहा, डलहौजी में रहा, तो कोई 20 साल बाद उसको जब मिला मैं, या उससे भी ज़्यादा टाइम बाद, तो उसने मुझे मेरी चिट्ठियां संभाल के रखी।
अरे
तो मैं हैरान हुआ कि हर उस चिट्ठी में मैंने, छोटी उम्र थी, 10 साल हो गई 11 साल, उसको कुछ ना कुछ अपने से लिख के भेजा जो मेरा लिखा हुआ, और पोइट्री में कि आप क्या वक्त बिताया हमने, या कैसे याद आते हो, या प्यार के ऊपर कुछ,
क्या बात।
तो ये लेके आए थे, तो एक दिन मेरी मदर ने पकड़ा मेरी डायरी को।
अच्छा।
तो मुझे कहती है कि ये किसने लिखा है सब, मेरी स्कूल बैग में थी, मदर्स की आदत होती कभी कभी उठा के देखती हैं। तो मैंने कहा ये सब मैंने लिखा है, और वो सारा आशिक मशूक पे था। तो कहती तुमने लिखा, मैंने कहा हाँ। तो कहती अच्छा, आज के बाद ना भगवान के लिए लिखना, या कुछ ऐसा लिखना जो किसी की जिंदगी सवार। तो हुनर परमात्मा ने दिया था, दिशा माँ ने दी। तो फिर उसमें फिर वो जैसे थोड़ा दिशा दी, तो फिर रंग आने लगा बचपन से, वो रूहानियत का, वो उससे जो सीखा, वो बांटने का, कि जो अच्छी चीज़ दूसरों तक तो पहुँच सके।
तो ब्रह्म कुमारी इसके साथ, इस संस्था के साथ आप बचपन से ही जुड़ गए थे।
हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में मेरी मदर जाया करती थी, मैं लगभग 4-5 साल का था, तो उनके साथ टोली खाने चला जाया करता था, जैसे बच्चे जाते हैं ना।
अच्छा अच्छा अच्छा।
और तो इंटरेस्ट कम होता, उनको होता कि प्रसाद जरूर मिलना है, कोई भी दिन हो मैं मांग लेता था। वैसे सिर्फ वीरवार को, गुरुवार को मिला करता था, पर मैं जो दिन भी हो वो मिल जाया करता था।
अच्छा।
वहाँ की हमारी अच्छी बहनें तो कहती आप जब आओगे तब आपको टोली खिलाएंगे, बस आ जाया करो। और योग का फिर वहाँ अच्छा लगता था मुझे
बचपन से ही।
अच्छा। ये दूसरी चीज जो मुझे परमात्मा ने देकर भेजा।
अच्छा।
मुझे योगियों के चित्र, शंकर जी के तपस्या करते चित्र।
अच्छा।
कृष्ण जी का बहुत प्यारा एक चित्र है, राम बैठे हैं तपस्या में। और मुझे अभी तक याद है कि जो काखागा पढ़ते हैं ना, तो उसमें र से ऋषि आता लास्ट में, या य से योगी आता है, मुझे सबसे अच्छा वो लगता था। रा से राजा होता था, पर मुझे राजा नहीं भाता था। उसमें एक योगी का चित्र था, इतने इतने बाल घने, और वो कहीं पहाड़ हैं, और एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसके बाहर ना बड़े आनंद में बैठे, तो उसकी जो चेहरे का आनंद खुशी थी ना, मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तो इस तरह से वो जैसे यात्रा का एक
शुरुआत हुई,
आकर्षण था उसमें। जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप आकर्षित होते हैं फिर खिंचते चले जाते हैं, और जिंदगी भी वैसे रास्ते बनाते चली जाते हैं। तो घर का माहौल मिला, फिर वो चीज़ आपको भाने लगी, तो जुड़ते चले गए, धीरे धीरे जुड़ते चले गए। कम जाते थे, लाइक हफ्ते में 15 दिन में, फिर धीरे धीरे से रेगुलरिटी बढ़ी।
आप इतने लंबे टाइम से अभी तक ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी, एक बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने बचपन के दिनों में और भी बहुत कुछ कर सकते थे?
मेरा बचपन बिल्कुल वैसा था जैसे आम बच्चे का होता है, जैसा आपका रहा होगा बिल्कुल वैसा ही रहा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। सिर्फ एडिशन इतनी थी कि साथ साथ थोड़ा ज्ञान योग था
जी।
बिल्कुल वैसे ही गेम्स खेलना, वैसी चीजों को पकड़ना, थोड़े दिन करके छोड़ देना, बिल्कुल वैसा ही। थोड़े दिन क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट खेला, थोड़े दिन बैडमिंटन का शौक था, बैडमिंटन खेला।
अच्छा।
चंडीगढ़ का जिमनेजियम बहुत अच्छा था, जिमनास्टिक सीखने चले गए, थोड़े दिन वो किया, थोड़े दिन थोड़ा कराटे, थोड़े दिन जूडो, थोड़े दिन स्विमिंग, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो बिल्कुल वैसा जैसे इंटरेस्ट बदलते जाते हैं, यहाँ आप महसूस करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वैसे ही ड्रामास में पार्ट करना, यू नो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो स्टेज ड्रामास में हो, सब चीजें।
अच्छा।
और बहुत अच्छे लोग मिले जिनसे, बड़े अच्छे अनुभवी और स्पिरिचुअल थे, और उनके साथ रह के बहुत मर्यादा से बहुत चीजें।
फिर आप यहाँ आबू में आप शिफ्ट कब, आपका आना कब हुआ? जब आप
10th के बाद मैं पहली बार आया था, क्योंकि उससे पहले मार्च में हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो हम आ नहीं पाते थे। पंजाब का ग्रुप अक्सर तब आता था, और बच्चों को आने भी नहीं देते थे
जी।
मेरे मदर उसके पहले आए, लेकिन सेंटर पे जाते थे हम लोग, वो भी कम, कभी हफ्ते में एक बार दो बार ऐसे।
अच्छा,
मैं रेगुलर नहीं जाता था।
अच्छा।
उसके बाद 10th के बाद रेगुलर।
अच्छा। तो किसी रीजन की वजह से हुआ या वैसे
नहीं, ऐसे ही दूर भी था, क्योंकि मोहाली हम फिर चंडीगढ़ से शिफ्ट कर गए थे।
अच्छा।
और सेंटर जो था वो चंडीगढ़ था, 10 किलोमीटर के, दो बस पकड़ के, दो तीन। वो तो मदर जब मेरी लेके जाएं और मैं उस दिन अवेलेबल हूँ संडे वाले दिन या कोई गुरुवार वाले दिन छुट्टी आ गई तो ही साथ है, लेकिन घर में रेगुलर मुरली पढ़ना वो पढ़ती
अच्छा।
थी और मुझे पकड़ा देती थी बड़ी तेज
थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
और सुबह 4 बजे उठा देना, उठ जाओ योग
अमृत वेला के टाइम,
वो उसमें वो नहीं करती थी, जिसे कहते ना रियायत नहीं थी।
अच्छा, अच्छा।
सुबह उठो और फिर सो जाओ चलेगा।
अच्छा,
लेकिन एक बार वो उठा देती ताकि रस पड़े ना योग।
अच्छा, और
अच्छा मुझे पढ़ के सुनाओ। और जिंदगी बड़ी नॉर्मल रही है बहुत। फिर माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल बना
जी,
और जो वहाँ डायरेक्टर हैं अभी उस समय एज ए सुपरिटेंडेंट आए, और जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन थे महेंद्र भाई, और डायरेक्टर जो अभी हैं डॉक्टर प्रताप भाई, वो चंडीगढ़ से थे, सेम सेवा केंद्र से थे जहाँ मैं ब्रह्मा कुमारी के जाता था, तो पहचानते थे। तो बात निकली कि आपको आना है तो आ जाओ।
अच्छा,
तो 92 में और था कि अरे अपना हॉस्पिटल है नो, दुनिया की समझ तो थी ना कोई, बहुत एक्सपीरियंस है, एक छोटी सी ट्रेनिंग की थी रैन वैक्सी में, बस इतना ही था।
अच्छा।
और तो लगा अपना हॉस्पिटल है और चलो यू नो अपनापन होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी लगती थी, अपने ही थे, और
अच्छा
जो डायरेक्टर थे और एडमिनिस्ट्रेशन थे वो अपने थे। और पहुंच गए यहाँ पे, फिर यहाँ जो लगे निर्वैर भाई जी मिले जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, दादी प्रकाश मणि जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी, फिर उनसे जुड़े तो लगा कि ये अपने हैं सारे।
पर यहाँ पे आना इसका मतलब ये भी था कि जो वहाँ की दुनिया थी उसको छोड़ के आना, तो उस चीज के लिए
छोड़ा कभी? मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा छोड़ा है, क्योंकि यहाँ आके भी बड़े अच्छे थे, सिंपल थे।
अच्छा।
और ज्यादा ही पाया, यहाँ रह के सारी दुनिया घूमी, क्योंकि मेडिकल से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, हर प्रोफेशन का लोग आके मिलते थे। देखो आप भी तो यहीं आके मिले।
जी जी,
है ना। हाँ, ये एक होता है कि आप यहाँ हैं तो आपके लिए मैरिड लाइफ के रास्ते उस ढंग से नहीं खुले होते कई बार, लेकिन वो बड़ी निजी धारणा होती है
यहाँ पे। ऐसा नहीं कह सकते कि हर तरह के लोग हैं यहाँ।
जी,
एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है।
नहीं नहीं नहीं, लोग हर तरह के।
हाँ, मतलब लोग हर तरह के,
हर इंसान अभिनंदन भाई अलग है, आपको समझना।
बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, सबकी लाइफ में यहाँ अध्यात्म है, उनको एक वातावरण मिला हुआ है, उनके अंदर अच्छे संस्कार है, सात्विक जिंदगी है, खाना पीना साफ सुथरा है, कुछ ऐसे व्यसन या ड्रग्स नहीं लेते हैं, स्मोकिंग, और एक ज्ञान योग का माहौल है। बाकी जो दुनिया से आते हैं ना
जी,
वो सब छोड़ के नहीं आते हैं, वो सब लेके आते हैं। वो गुस्सा करने वाले भी मिल जाएंगे आपको, चोरी करने वाले भी मिल जाएंगे, झूठ बोलने वाले भी मिल जाएंगे, और वो हर तरह के यू नो लाइक मूवीज देखने वाले भी, सीरियल पसंद करने वाले भी मिल जाएंगे, तो सब तरह के लोग हैं। हाँ, ये है कि उनको एक माहौल अच्छा मिले, कि जो बड़े थे ब्रह्मा बाबा या दादियाँ, उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया कि सुबह यहाँ ज्ञान योग का माहौल है, अब आप अपने ऊपर काम करो उस माहौल में। जैसे आपको कोई फुटबॉल का ग्राउंड बना के दे दे, अब उसमें अच्छे प्लेयर बनो, बनो तब भी अच्छे, अगर बाहर बैठे रहो ना बनो तो वो भी आपके ऊपर है। ये वाली लोग यहाँ सब तरह के।
अच्छा।
हाँ जी,
मतलब जैसे जो नॉर्मल जो मेट्रो सिटीज में जो लाइफ है
जी,
वो मतलब वो लाइफ यहाँ पे भी जी जा सकती है आपके हिसाब से।
मेट्रो की तो लाइफ ही, अब आपको क्या बताएं, वहाँ 2 से 3 घंटे तो आने जाने में लगते लोगों को ज्यादातर, बहुत कोई लकी हो तो घर पास होगा, और यहाँ तो 5 मिनट में सारा शहर क्रॉस कर सकते हो। माउंट आबू इतना छोटा शहर है कि आप 5 मिनट में दूसरे किनारे पे पहुंच जाओ।
वो बिल्कुल सही बात है, लाइफस्टाइल की बात,
और इतना वक्त देती है। और वैसे भी मुझे मेट्रो की लाइफ बहुत पसंद नहीं
थी, मेरा भी पर्सनली ये थॉट है। प्लस सबसे अच्छी जो चीज आपके साथ रही, आपकी मदर का इन्फ्लुएंस, उनका मार्गदर्शन, जिस तरह से वो रोज सुबह उठाते थे, मेरे ख्याल से रोज सुबह जिस टाइम पे आप अमृत वेला किया करते थे, जो अभी भी सब करते हैं, उस टाइम पे तो लोग पार्टियों से वापस आते हैं
जी
हमारे।
ये हुआ मेरे साथ।
हाँ, तो ये एक तरह से अच्छी परवरिश हुई
जी
ना। हाँ, आपकी शुरुआत अच्छी रही, आपकी इंटेंशन सही रही, आपकी चाहत सही रही, लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाती है और उस चीज के साथ जब आपको लोगों का प्यार मिलने लगता है, लोग आपको कुछ महत्व देने शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे जब आपके अंदर अहंकार जो आ जाता है ना, वहाँ कहानी सारी खत्म हो जाती है। उस चीज़ को बहुत कम लोग संभाल पाते हैं
जी,
ये दुख की बात।
एक बोली कि जब लोग बाहर से आते हैं ना, तो अपना इस दीवार के बाहर छोड़ के नहीं आते। मान लो एक व्यक्ति यहाँ आया है ब्रह्मा कुमारीज में, और वो एक फलां स्थान पे सेवा दे, उसको चांस मिला, उसने कहा नहीं बहुत अच्छा मैं सेवा कर। लेकिन जो वो जब आया है ना, तो वो अपनी आदतें बाहर छोड़ के नहीं आया, उसकी आदतें भी साथ। उसको पुरुषार्थ करना है कि वो जो टेम्पटेशंस हैं उसमें ना जाके, टेम्पटेशंस होते हैं, और जो ऐसे नहीं कहीं आप स्कूल जाते हैं, मेरे को याद है बचपन से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई मदारी होता था तो वो लौटते हुए हम उसको भी तमाशा देखने लग जाते थे, वो बांसुरी बजाता था, हम लोग देख रहे हैं। टेम्पटेशंस होते हैं ना, लाइक किसी जा रहे हैं स्कूल या स्कूल से घर आ रहे, सुबह नहीं दोपहर की टाइम होता था, आ रहे हैं और कुछ और तमाशा लगा आप खड़े होके देखना, बच्चे शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि राह तो बड़ी ऊंची, खुद को प्रेम से, सुख से, आनंद से, शांति से संपन्न बनाने की यात्रा। योग क्या है? योग खुद पे काम करने का नाम, ज्ञान बाहर सुनाने के लिए नहीं है, सुनाना यहाँ चौथा है। योग का मतलब होता है कि अपने आप को सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, अपने स्वरूप को समझ के कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मेरा कितना प्यारा स्वरूप है ना, वैसा ही तो उसको समझ के वैसे विचार, वैसी भावनाएं, यू नो, वैसे लोगों का, अच्छे लोगों का संग भी है यहाँ, तो उसको भरना है। सेवक तो ईश्वर के, ईश्वर का कार्य है, उसमें सेवादार।
सेवा की बात से मैं कुछ कहना चाहता हूँ
जी।
जैसे योग आपने कहा भी, योग जो होता है वो अपने ऊपर काम करने के लिए, तो उसको अपने तक रखिए।
देखो दुनिया की सब यात्राएं बाहर लेके जाती है, ठीक है, आप कुछ भी जाओगे आप बाहर ही जाओगे। योग एक ऐसी यात्रा है जो अंतर में आपको आपके सत्य स्वरूप तक लेके कि शरीर के पीछे आंखें,
मतलब
आंखों के पीछे मन, मन के पीछे आप विद्यमान है और आप चैतन्य ऊर्जा उस स्वरूप तक लेके जाते हैं ना, ये अंतर की यात्रा है। उस यात्रा को करके अपना सुख लीजिए,
बिल्कुल,
है ना। लेकिन मैंने आपको वही कहा कि जब व्यक्ति आता है ना यहाँ, तो उसकी इच्छाएं साथ आती, उसकी आदतें साथ आती। वो कहावत आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि प्रेममय व्यक्ति को, प्रेम से भरे व्यक्ति को आप कहीं भी भेज दो, वो सबसे प्रेम बना लेगा। झगड़ा करने वाले को कहीं भी भेज दो, वो सबसे झगड़ते
ही। मुझे तो ऐसा लगता है जी कि अटेंशन चाहिए,
उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए।
ध्यान तो देना नहीं
चाहिए, जो बेचारे कर रहे हैं ना वो बड़ी दयनीय अवस्था
में, तो बोलना चाहिए,
क्योंकि वो सबसे कीमती जो सुख है ना, क्योंकि वो छोड़ के देखो जो चीजें कम है ज्यादा यही रह जानी है।
इतने मतलब टेक्निकली प्योर हिंदी वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करना, अपना स्पिरिचुअल बातें एकदम इस तरह की करना कि सर के ऊपर से निकल जाएं, लेकिन वो जो चीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में उनका कोई ख्याल
है। देखो आप सोचिए, वो कथाकार है, कथाकार क्या करता है, कथा सुनाता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जो स्पिरिचुअल टीचर होता है, गुरु होता है, उसके अंदर वो गुरु शांति,
ये तो एक आखिर में चीज रह गई थी।
देखो शांति पे भाषण करना अलग चीज है, शांति का अनुभव करना बहुत अलग चीज, प्रेम पे भाषण करना बहुत अलग चीज है, और प्रेममय हो जाना वो बहुत अलग चीज है। तो इसलिए जब भी आप किसी को ऐसा देखो ना, कोई कथा कर रहा है, कुछ भी सुना रहा है, ये जरूरी नहीं समझ लेना कि वो स्पिरिचुअलिटी के उस पर कथा का, ठीक है, टेप रिकॉर्डर भी सुना देता है, तोता भी सुना
देता है। तो आप मानते हैं ना कि मतलब
ये होता है सब जगह, मिलेगा ये सब जगह होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें यहाँ गुणग्राही बनना, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो जानता है कि मरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर वो नजर रखता है कि हेल्थ कैसे बने। तो यहाँ तो सारे दुनिया में हमारे अध्यात्म में वो विकार शब्द जो है ना, कहते ना विकार, विकार का मतलब होता है त्रुटि, विकृत। एक होता अकार, अकार मतलब ओरिजिनल, और विकार मतलब जो बदल गया है।
आप मतलब अपना जो भी कर रहे हैं, जो भी अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा वाली भावना से थोड़ा ना होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस ही स्टार्ट हो जाता है, हर चीज कमर्शलाइज हो गई
जी।
यूट्यूब पे चैनल्स बन गए हैं, ब्रांड्स बन गए हैं, प्रोडक्ट्स बन गए हैं।
जो जैसा होता है ना, जिस अवस्था में है, जैसे बीमार को कहीं ले जाओ तो उसका जो इन्फेक्शन फैलना ही फैलना, वो चाहे मंदिर हो चाहे वो हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, बैठा है ना, तो जो जैसा है वो उसने वही कर, और यही यात्रा है।
ज्ञान, योग और ये जो कपड़े हैं ना, सफेद कपड़े, इसका इस्तेमाल करके अपने अंदर की इच्छाओं को जाहिर नहीं होने देते सामने वाले, ये सबसे बड़ी खराब बात।
अभिनंदन जी इच्छा जाहिर हो जाती है।
हाँ,
मुंह खोलते ही
फिर भी इतने फॉलोअर्स,
आंख देखते ही बता देगी कि इच्छा,
फिर भी इतने फॉलोअर्स। अब जैसे जो बच्चे होते हैं, नादान बच्चा होता है ना, हम उसको कहते हैं कि ऊपर वाले को याद करो। अब बच्चे को तो पता नहीं कि भगवान कौन है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। उसकी मासूमियत होती है कि वो विश्वास करता है कि मेरी बात कोई सुनेगा
जी,
और वहीं पे कोई इंसान आ जाए, उसको सिखाने लग जाए कि भगवान से ऐसे बात किया करो, ऐसे योग लगाया करो, और वो इंसान फरेबी हो, उस बच्चे का क्या हो।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सामने टीचर कैसा मिला।
यस, यही कि जो बीच का जो माध्यम है, जो अपने आप को खुदा मानने लग गए हैं, जिनके इतने इतने फॉलोअर्स बन गए हैं,
वो एक ही है।
हाँ, तो उस चीज का बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या
क्या होता है ये, तो अब जो बेचारे कई बड़े भोले होते हैं, वो बाहरी अडंबरों में, बाहरी दिखावे में, बाहरी क्या बोलते हैं, शानो शौकत देख के फंस जाते हैं। अब उनके लिए भी क्या कहेंगे, दया ही आएगी ना। लेकिन बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो, जिनको अच्छे लोग, और ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए कि वो बाहरी चीज़ों को देख के आकर्षित ना हो, क्योंकि ये जिंदगी भर संस्कार चलता है। आज वो किसी कथाकार के पीछे वो आकर्षित हो रहे हैं, कल किसी और चीज़ के पीछे, क्योंकि उनको सिर्फ वाणी प्रभावित कर, उनको ट्रेंड करना चाहिए कि कैसे सत्य और असत्य की परख की। शेर है, हिंसा से नाता हो जिनका, हिंसा से नाता हो जिनका, वो कभी शांति के करीब नहीं होते
जी।
अंधेरों पर नजर रखने वालों को उजाले नसीब नहीं
जी।
तो जिंदगी में अगर उजाला चाहिए ना, तो उजाले पे नजर रखना।
बिल्कुल सही बात है।
और ये बच्चों को सचमुच सिखाना होगा कि उजाला क्या होता है।
बच्चे, मैं आपको सच बताऊं, आजकल के जो बच्चे हैं, बड़े बड़े स्मार्ट है,
स्मार्ट,
बड़े स्मार्ट, और
हमारे से ज्यादा अच्छे
हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत ज्यादा
जी हैं।
वो खुद चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी सही जगह पे चैनलाइज करें।
मैं आपको बताऊं, मुझे याद है बचपन में हम ना 2 महीने पहले दिवाली से पटाखे इकट्ठे करने शुरू कर देते थे, यू नो, लाइक इतना शौक होता था कि पटाखे चलाने। अभी पिछले साल की बात है, मेरे दिवाली के पास मेरे फ्रेंड का एक दिन पहले फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा, उसको बेटे का नाम लेके पूछा कि पटाखे वटाखे ले दिए सब, वो कहता नहीं जी, मैंने ग्रीन दिवाली मनानी है, नो पटाखे। और मैं कंपेयर कर रहा था कि कितने सियाने हैं, मतलब इस उम्र में तो मैं महीना पहले पटाखे इकट्ठे करता था।
वही मैं कहना चाह रहा था कि आजकल की जो, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो साथ में पॉजिटिव चीज़ भी बहुत आई हैं। अच्छा, अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो आप ये मत सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लोग बच्चों का जो एक नॉर्मल जो एक परसेप्शन है, जो उनका जो मानना है, आजकल ना वो सबको पता है, ओम शांति हर जगह पे, ऑटो में भी नजर आता है, घर के बाहर भी, हर जगह वहीं तक सीमित रखते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन कर ले, जाएंगे नहीं, जाना नहीं चाहते। मैं जिस सेंटर में जाता था, मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मेरे को किसी चीज़ की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मुझे हर्ट ज़रूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं आपको एक बात कहता हूँ, बस ये जो चीज़ें गुजरती है ना ज़िंदगी में, जिस दर्द से आप गुजरे हो, मैं समझ सकता हूँ
जी,
बस आपको इतना करना है, ये याद रखना है कि अब मुझे ये ऐसा दर्द कभी जिंदगी में किसी को नहीं देना।
बिल्कुल, वो तो
और आप कितना बेटर बने, आप समझे,
बिल्कुल बिल्कुल,
आपकी मासूमियत नहीं, आपकी काबिलियत बढ़ी
जी जी,
आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी कि मुझे दो चीज़ें होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और ऐसे लोग हमें ये सिखाते हैं हमें क्या नहीं करना।
दुख ये है सर कि वो जो प्रोपोर्शन है ना, 50-50 भी नहीं है, 80-20 का है।
वो देखो, एक चीज़ है कि अभिनंदन, ये बहुत दुख की दुनिया। एक सीधा सीधा अध्यात्म का है कि आप जिस चीज़ से भरे होते हैं ना, वो आप दूसरों को, वो बेचारे खुद इतने दर्द और दुख से भरे होंगे, पता नहीं किस मजबूरियों से, हालातों से,
तो उसका तो उसके नाम पे मत करो ना सब,
ना ना ना, हालात सब पे आएंगे, और वो जब देते हैं ना, चाहे वो सुख देने की भी कोशिश करे, सुख नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि वो खुद उन्हीं चीजों से भरे हो। जैसे कोई गुस्से में हो ना, तो कई बार जो सबसे प्यारा व्यक्ति होता है ना पास, बाहर से वो आए और गुस्से से भरे हुए ऑफिस से, जो सबसे प्यारा व्यक्ति है ना, उस पर भी गुस्सा हो जाता है। अब उनके मन में कोई है नहीं, लेकिन उस समय उस चीज़ से भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें अभिनंदन इतना मैच्योर होना होगा कि इनको माफ़ कर, नज़र इनसे हटा के उस पे रखनी होगी जो सचमुच इस दुनिया को कुछ देना चाहता, उससे भी गलतियां हो जाती।
सिस्टम भी तो क्लीन करना चाहिए ना।
क्या होता है कि बड़ा मुश्किल है, ये अंदर की यात्रा है। बाहर जैसे टेबल पे तो डस्टर मार के क्लीन कर दोगे, अंदर जो क्लीन करना है ना वो अपने सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता, और उसमें भी मेहनत लगती है, वक्त
कम से कम,
आदतें
जो लोग गलत हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल करके अपने आप को प्रचार करने की कोशिश, उनको बाहर कर देना चाहिए।
बहुत सुख मिलता नहीं है, बहुत सुख मिलता नहीं है। जो भी बाहर की दौड़ में गया ना वो अधूरा ही रह जाएगा, वो कभी भी पूरा महसूस नहीं हो। जैसे ना आप एक बैसाखी पकड़ लो, दो पकड़ लो, पांच पकड़ लो, आप कमज़ोर होते जाएंगे कि शक्तिशाली बने। शक्तिशाली वो होता है जो निरंतर सचमुच सबके भले में चलता है। और देखो, हम याद किसको करते हैं? याद उसी को करते हैं जो सबके लिए अच्छा करके जाते ना, उनसे हो सकता किसी के लिए बुरा भी हो जाए। और याद उन्हीं को करना चाहिए जो अच्छे करते हैं, क्योंकि इनको अपने आप ही अपने कर्मों का सामना होता रहता।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें पता हो कि सामने वाला इंसान गलत है और तो हमें उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए।
जैसे एक्सीडेंट नहीं होने देते ना हम लोग, बचा के चलते हैं। जिंदगी बिल्कुल ड्राइविंग जैसी।
अगर मैं बहुत प्यार करता हूँ ऊपर वाले भगवान से, मेरा बड़ा प्यार है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंसान की, कि उसको बड़ा प्यार है भगवान से, और दूसरी तरफ से वो देख रहा है कि ये इंसान जो है ये तो ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि मैं तो भगवान के बहुत करीब हूँ और देखो मैंने क्या अपनी ज़िंदगी को कैसे त्यागा है, है ना। तो आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो क्या फिर भी आपको उसको इग्नोर करना चाहिए?
हमें क्या लेना, वो उसकी यात्रा है। जैसे हम जाते हैं ना अपनी कार लेके ट्रैफिक में, हमें जहाँ पहुँचना होता हम पहुँचते, कौन कहाँ जा रहा है कि उसकी निजी यात्रा।
मतलब आपको दुख नहीं होगा कि इसने
आनी चाहिए रहम।
सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं यही कहूँगा, घर पे बैठ जाओ।
घर पे नहीं जाना तो पड़ता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सीखने के लिए, और ये चीज़ें अनुभव ही बनाती।
काश कोई कम्युनिटी से सीखने को मिल जाता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो आज का यूथ है ना ये कहता है कि काश हमें कोई ऐसी कम्युनिटी मिल जाए।
बैठ के कैसे सीखे
वो? अगर
साइकिल चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए रोड पे उतरना पड़ेगा।
कम्युनिटी कोई सिखाए ना वो, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये चीज। मैं
दुनिया ही पैसे की, ताकत की, शोहरत की, दिखावे की, झूठे दिखावे की,
मैं
तो इसमें, इसीलिए योग होता एकांत में है, लेकिन किसी से थोड़ा सा
नहीं। सर मैं ये
पर ये इसका अभिनंदन जी, आज के युग का ये बहुत सुख है कि YouTube पे आपको बहुत कुछ मिल जाता
है। YouTube से सारा बेड़ा गर्क होता है सर।
देखो दुनिया में इस समय मेडिकल और एजुकेशन सबसे बड़ा व्यापार बन चुके हैं, सबको पता है। तो क्या हम बीमार होने पे हॉस्पिटल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते? जाना जरूरी, क्योंकि आपको ये पता लगता है कि ये मुझे नहीं करना है, ये करना है। दोनों सीखते हैं आप। दर्द जरूर गुजरता है, हर एथलीट को, हर बॉडी बिल्डर को दर्द से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो वो खुद को बनाता है ना उस दर्द से गुजर, और ये देखा गया जो लोग दर्द से गुजरते हैं ना, अगर आप सचमुच जिंदगी का लोगों का अनुभव देखेंगे, जो बड़े प्यारे लोग, सुंदर लोग, वो बहुत दर्द से गुजरे। दर्द खाली हमें बिगाड़ता नहीं है, ये आप पे है, आपको बनाता।
ये मुझे यहाँ पे, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक चीज़ हमने ये दिमाग में बिठा ली है या लोगों ने बिठा ली है कि अगर आपको उसको याद करना है तो आपको किसी कम्युनिटी में जाना पड़ेगा।
नहीं, कम्युनिटी मैं नहीं कह रहा, आपके मदर आपने कहा जाते हैं, तो आप कितनी सारी अच्छी चीज़ें सीखे। मैं ये बड़ी सटल बात कह रहा हूँ, योग की बात है, अध्यात्म की बात है। हम जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं ना, मन जो है ना आत्मा का हाथ है, वो हमारे अंदर लगनी शुरू।
क्या है ना कि ये जो ज्ञान है ना, जो ऐसे बोल बोल के कि आपको किसी कम्युनिटी में जाना चाहिए, क्या होता है, ऐसे बोल बोल के मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो इनोसेंट लोग हैं वो चले जाते हैं। बकरों की तरह इनको ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। जब ये जाते हैं इनका दिमाग कर दिया जाता है बंद। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और क्यों, फिर जिस तरह से जो भी चीज़ें आप इनके दिमाग में डालोगे ये उसी तरह से अपने इशारों पर चलेंगे।
अच्छा ये बताइए कि सबके सब बुरे हैं?
बिल्कुल भी नहीं।
ऐसे मेडिकल डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, लोग इलाज कराने जाते हैं, लोग किडनियां भी निकाल लेते हैं, है ना। टीचर अच्छे भी होते हैं, टीचर बुरे भी।
नहीं, मेरा कहना ये था
जो गलत है
जाना जरूरी नहीं है कम्युनिटी में, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता।
नहीं नहीं, आप अगर सीखने पे हैं तो कहीं भी सारे पूरी प्रकृति
अकेले चले जाए, अकेले चले जाइए।
पूरी जिंदगी, पूरी प्रकृति अगर सीखना है ना तो आप हर चीज से सीख सकते।
बिल्कुल,
ये बल्ब क्या कह रहा है, रोशनी से
जैसे आपका तो दिल पहले से ही अच्छा था, आप पहले से ही एक उस स्वभाव के थे। मेट्रो सिटी वाली बात मैंने आपसे इसलिए कही थी कि आपका इंटरेस्ट कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना गया नहीं, क्योंकि आप दिल से जो थे हमेशा।
नहीं, अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
बिल्कुल,
यू हैव अ गुड प्लेस टू लिव।
बिल्कुल बिल्कुल,
हर चीज़ अच्छी जो है अच्छी लगेगी मेरी, जब तक सेंसेस काम करती हैं।
जी जी जी।
तो अगर मेट्रो में भी जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी, ऐसे मेट्रो में भी बड़े प्यार वाले लोग हैं जिनसे बड़ा दिल का नाता है।
शायद हमारी इस बातचीत के थ्रू कुछ लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाए कि हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शायद
जी,
लेकिन मुझे लगता नहीं।
नहीं, आशा रखनी चाहिए। हाँ। कि होगा। अगर कोई दीपक इसीलिए ना जलेगी, अंधेरा तो कभी मिटना नहीं, तो कभी रोशनी नहीं।
जी।
देखो, हमें जिंदगी में अभिनंदन जी बहुत अच्छे टीचर भी मिले, और मैं कहूँगा कम अच्छे भी मिले, लेकिन मैं याद उनको करता बहुत अच्छे, जिन्होंने अच्छी बातें सिखाई।
उम्मीद ये है जी कि जिन सबके दिमाग जो ऊपर का हिस्सा जो बंद कर दिया गया ना, उन बिचारों के दिमाग जरा खुले।
ये तो चलो फिर मेरे साथ प्रेयर करो ना, आप मन से करो कि
बिल्कुल
सबका भला।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
इसमें
भला होना,
अपना भी हो जाता है।
अपना हो या ना हो,
ये है
जो सही इंसान है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो किसी के साथ गलत
नहीं होना। आपकी भावना बहुत अच्छी है
जी। ये अच्छा, ये भी चीज मुझे यहाँ बड़ी अजीब लगती है, जब आप अपनी सोच, मैं कुछ सोच बता, आपकी भावना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो हर किसी को ऐसा होना चाहिए।
कहते हैं इट्स द पॉजिटिविटी विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स, उसके एक अपना आकर्षण होता है।
जी जी,
बुरी चीजों के आकर्षण नहीं होते, अच्छी चीजें आकर्षित करती।
वाणी यहाँ पे बड़ी मैटर करती है, मैं जो देख रहा हूँ।
बुरे लोगों में भी अच्छी चीजों से लोग आकर्षित हो जाते, सच्चाई ये है। और कई बार बहुत अच्छे लोग थोड़ा सा जुबान के ऐसे होते हैं, लोग उनसे दूरी बना लेते।
चलो सर, हमारी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। आप अपनी अपनी जिंदगी से आप क्या एक कुछ सीख जो ऑडियंस को देना चाहते हैं जरा बता दीजिए।
सीख यही है, जिंदगी खूबसूरत है, बस जीना सीखना। जिंदगी खूबसूरत है, बस जीना सीखना है, अपने जख्मों को खुद ही सीना सीखना है। हर पल में आनंद है दोस्त, आनंद पीना सीखना है।
क्या
तो ये है कि हम कितने भी दर्द से गुजरे हैं, दर्द को ना पकड़ के रखें, तो अच्छा है। मैं आपको दिल की बात कहता हूँ, मैं रोज से पर नज़र करके कि तेरा पद्मों शुक्रिया। मुझे हो सकता है ज़िंदगी में 10-20 चीज़ें अच्छी ना मिली हो, लेकिन तेरा पद्मों शुक्रिया, क्योंकि पद्मों अच्छी चीज़ें हैं। और जो है मैं उसको एंजॉय करने की कोशिश, जो लोग मेरे साथ हैं, जो जितना है, जो सेवा आ जाए उसको भी एंजॉय करता हूँ। जो कल आना अपने आप आ जाएगा। आओ सीख ले मुस्कुराना, संग संग जिंदगी के गुनगुनाना। आओ सीख ले मुस्कुराना, जो मिला है आज तक अच्छा, कल आएगा जो है आना। आओ सीख ले मुस्कुराना, चलो साथी मिलकर चले तब तक, मंजिल आ जाए अपनी अपनी जब तक, फिर सबको अपने रास्ते जाना। आओ सीख ले मुस्कुरा। इस दुनिया में अभिनंदन जी अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं, चाहे वो लोगों में है, पॉलिटिक्स में, कहीं भी, लेकिन पद्मों समझते, लाखों करोड़ों अरबों खरबों से पद्मों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी, उन अच्छी चीज़ों पर नज़र रख के बीच बीच में मुस्कुरा लेना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विवेक भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
परमात्मा का शुक्रिया, ऐसी बहाने आज बैठे तो सही, पहली बार आप।
जी जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिलेंगे।
जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सारी गुड विशेज हैं, और परमात्मा से प्रार्थना है आपको अच्छी अच्छी ऐसे जी, और जी। अच्छा करने का जज्बा देता रहे, आपकी अच्छी भावनाओं से सबका भला हो, और जिस दर्द से आप गुजरे हैं वो बिल्कुल हील हो जाए, और आपको बहुत अच्छा लगे।
जी
शुक्रिया। सो फॉर अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड,
डेफिनेटली। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक नए मेहमान के साथ। जो आज हमने सीखा वो ये सीखा कि तरह तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीनी चाहिए जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, जो आपकी चाहत रही है, जिस वजह से आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उस चाहत को कभी मरने नहीं देना चाहिए। किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जैसे विवेक भाई जी ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को कुछ कुर्बान नहीं किया, नॉर्मल ज़िंदगी जी बचपन से, एक प्रैक्टिकल लाइफ, और अगर यहाँ आए भी तो एक अपनेपन में आए कि चलो हमारा एक इंस्टीट्यूशन ग्रो हो रहा है, हमारा हॉस्पिटल, तो किसी की कोई बंदिश नहीं थी, किसी ने कोई चीज़ थोपी नहीं थी। उनकी माता जी ने उनको बड़ी अच्छी परवरिश दी, सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला, जिस टाइम पे आज का जो दौर है हम लोग पार्टी करके वापस आते हैं, तो एक बड़ी उनमें एक नायाब चीज़ थी, डिफरेंट चीज़ थी, जिसकी वजह से आज वो ना सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी एक अच्छे से जी रहे हैं, बल्कि और लोगों को, जैसे अभी उन्होंने भी मुझे समझाया, दूसरों को समझाते भी हैं, इंस्पायर भी करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको भी यही चीज़ महसूस हुई होगी। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।